लुका की मार्फत इंजील बाब 17। ईसा ने अपने शागिर्दों से कहा, आजमाइशों को तो आना ही आना है, लेकिन उस पर अफसोस जिसकी मार्फत वो आए। अगर वो इन छोटों में से किसी को गुनाह करने पर उकसाए तो उसके लिए बेहतर है कि उसके गले में बड़ी चक्की का पाट बांधा जाए और उसे समुन्दर में फेंक दिया जाए। खबरदार रहो, अगर तुम्हारा भाई गुनाह करे तो उसे समझाओ, अगर वो इस पर तौबा करे तो उसे माफ कर दो। अब फर्ज करो कि वो एक दिन के अंदर 7 बार तुम्हारा गुनाह करे, लेकिन हर दफा वापस आकर तौबा का इजहार करे तो भी उसे हर दफा माफ कर दो। रसूलों ने खुदावंद से कहा, हमारे ईमान को बढ़ा दें। खुदावंद ने जवाब दिया, अगर तुम्हारा ईमान राई के दाने जैसा छोटा भी हो तो तुम शहतूत के इस दरख्त को कह सकते हो, उखड़कर समुन्दर में जा लग, तो वो तुम्हारी बात पर अमल करेगा। फर्ज करो कि तुम में से किसी ने हल चलाने या जानवर चराने के लिए एक गुलाम रखा है। जब ये गुलाम खेत से घर आएगा तो क्या उसका मालिक कहेगा, इधर आओ खाने के लिए बैठ जाओ? हरगिज नहीं, बल्कि वो ये कहेगा, मेरा खाना तैयार करो, ड्यूटी के कपड़े पहनकर मेरी खिदमत करो जब तक मैं खा पी न लूं, इसके बाद तुम भी खा और पी सकोगे। और क्या वो अपने गुलाम की इस खिदमत का शुक्रिया अदा करेगा जो उसने उसे करने को कहा था? हरगिज नहीं। इसी तरह जब तुम सब कुछ जो तुम्हें करने को कहा गया है कर चुको, तब तुमको ये कहना चाहिए, हम नालायक नौकर हैं, हमने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। ऐसा हुआ कि यरूशलेम की तरफ सफर करते करते ईसा सामरिया और गलील में से गुजरा। एक दिन वो किसी गांव में दाखिल हो रहा था कि कोढ़ के 10 मरीज उसको मिलने आए। वो कुछ फासले पर खड़े होकर ऊंची आवाज से कहने लगे, ए ईसा उस्ताद, हम पर रहम करें। उसने उन्हें देखा तो कहा, जाओ अपने आप को इमामों को दिखा दो ताकि वो तुम्हारा मुआयना करें। और ऐसा हुआ कि वो चलते चलते अपनी बीमारी से पाक साफ हो गए। उनमें से एक ने जब देखा कि शिफा मिल गई है तो वो मुड़कर ऊंची आवाज से अल्लाह की तमजीद करने लगा और ईसा के सामने मुंह के बल गिरकर शुक्रिया अदा किया। यह आदमी सामरिया का बाशिंदा था। ईसा ने पूछा, क्या 10 के 10 आदमी अपनी बीमारी से पाक साफ नहीं हुए, बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस गैर मुल्की के अलावा कोई और वापस आकर अल्लाह की तंजीद करने के लिए तैयार नहीं था? फिर उसने उसे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया है। कुछ फरीसियों ने ईसा से पूछा, अल्लाह की बादशाही कब आएगी? उसने जवाब दिया, अल्लाह की बादशाही यूं नहीं आ रही कि उसे जाहिरी निशानों से पहचाना जाए। लोग ये भी नहीं कह सकेंगे वो यहां है या वो वहां है, क्योंकि अल्लाह की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, ऐसे दिन आएंगे कि तुम इब्ने आदम का कम अज कम एक दिन देखने की तमन्ना करोगे लेकिन नहीं देखोगे। लोग तुमको बताएंगे वो वहां है या वो यहां है, लेकिन मत जाना और उनके पीछे न लगना, क्योंकि जब इब्ने आदम का दिन आएगा तो वो बिजली की मानिंद होगा जिसकी चमक आसमान को एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक रोशन कर देती है, लेकिन पहले लाजिम है कि वो बहुत दुख उठाए और इस नस्ल के हाथों रद्द किया जाए। जब इब्ने आदम का वक्त आएगा तो हालात नूह के दिनों जैसे होंगे। लोग उस दिन तक खाने पीने और शादी करने कराने में लगे रहे जब तक नूह कश्ती में दाखिल न हो गया। फिर सैलाब ने आकर उन सबको तबाह कर दिया। बिल्कुल यही कुछ लूत के अय्याम में हुआ। लोग खाने पीने, खरीदो फरोख्त, काश्तकारी और तामीर के काम में लगे रहे, लेकिन जब लूत सदोम को छोड़कर निकला तो आग और गंधक ने आसमान से बरसकर उन सबको तबाह कर दिया। ابن آدم کے ظہور کے وقت ایسے ہی حالات ہوں گے۔ جو شخص اس دن چھت پر ہو وہ گھر کا سامان ساتھ لے جانے کے لیے نیچے نہ اترے، اسی طرح جو کھیت میں ہو وہ اپنے پیچھے پڑی چیزوں کو ساتھ لے جانے کے لیے گھر نہ لوٹے۔ لوط کی بیوی کو یاد رکھو، جو اپنی جان بچانے کی کوشش کرے گا وہ اسے کھو دے گا، اور جو اپنی جان کھو دے گا وہی اسے بچا رکھے گا۔ میں تم کو بتاتا ہوں کہ اس رات دو افراد ایک بستر میں سوئے ہوئے ہوں گے، ایک کو ساتھ لے لیا جائے گا جبکہ دوسرے کو پیچھے چھوڑ دیا جائے گا۔ دو خواتین چکی پر گندم پیس رہی ہوں گی، ایک کو ساتھ لے لیا جائے گا جبکہ دوسری کو پیچھے چھوڑ دیا جائے گا۔ دو افراد کھیت میں ہوں گے، ایک کو ساتھ لے لیا جائے گا جبکہ دوسرے کو پیچھے چھوڑ دیا جائے گا۔ انہوں نے پوچھا، خداوند یہ کہاں ہوگا؟ اس نے جواب دیا، جہاں لاش پڑی ہوں وہاں گدھ جمع ہو جائیں گے۔